الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين. آج ہم ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالی کی توفیق سے سورة المطففين کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة المطففين اس کا نام اس سورت کی پہلی آیت میں ہی ہے، للمطففين. اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ تر یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مدنی ہے. جو کہتے ہیں کہ مدنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ناپ تول میں لوگ بہت خرابی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. جو کہتے ہیں مکی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں اساطیر کا ذکر ہے، اور یہ بات مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے. بعض کہتے ہیں یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں مدینہ میں جا کے پہلی سورت یہی نازل ہوئی. تو اس سورت کے اندر آپ اور اگلی سورت میں بھی آپ بہت زیادہ کتاب یعنی اعمال نامے کے اوپر بات پڑھیں گے. پچھلی سورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے یہ کتابیں تیار کی جا رہی ہیں، کہ رومن کاتبین ان کو تیار کر رہے ہیں، اور وہ ہر وقت انسان کی نگرانی پہ لگے ہوئے ہیں، انسان کے ساتھ ساتھ ہیں. اب ان کتابوں کی ایک کون سی لوکیشن ہوگی، کیا جگہ ہوگی جب وہ لکھ دی جائیں گی، مکمل ہوں گی، اور پھر کیسے ان کو ہینڈ اوور کی جائیں گی، یہ آگے اگلی صورتوں میں ہے. اور اس صورت کے اندر آپ 1 سے 6 تک تو متففین کی ہی بات دیکھیں گے. متففین کون لوگ ہوتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد آپ 7 آیت سے لے کر 17 تک آپ ان لوگوں کی بات دیکھیں گے جو فجار ہیں، فاجر لوگ ہیں. ان کی کتاب کے بارے میں بھی دیکھیں گے، اور ان کے کیا اعمال تھے، ان کے کیا قصور تھے، وہ بھی آپ دیکھیں گے. اس کے بعد ابرار کی بات آئے گی، ابرار لوگ جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا آیت نمبر 21 تک، کہ ان کی کتاب کے ساتھ کیا ہوگا اور ان کی روحوں کے ساتھ کیا ہوگا، کتاب کے ساتھ کیا ہوگا، جیسے پہلے فاجروں کی کتاب اور ان کی روحوں کے بارے میں بتایا گیا. اور اس کے بعد 22 سے لے کے اینڈ تک آپ کو قیامت میں جو ابرار ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا. یعنی جو پہلے ہیں وہ کتابیں، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کی کتاب کہاں جاتی ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے، وہ چیز ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جو 22 سے آپ دیکھیں گے ابرار کے ساتھ، یعنی کیا ان کے ساتھ ہوگا جنتوں میں، وہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ انیشیل فیز جو برزخ کا ہے وہ تو پہلی کتاب کے جو ذکر ہے اس کے اندر ہے، اور اس کے بعد جنت کے اندر کیا ہوگا، تو 2 فیزز کے اندر یہ بات ہے. تو دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل، سب سے پہلے تو یہ سورت ویل سے ہی سٹارٹ ہو رہی. اس پارے کے اندر ایک اور سورت بھی، سورہ ہمزہ بھی اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، اور یہاں پہ ویل للمطففین. تو ویل کیا چیز ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ ہم نے خاص طور پہ سورہ مرسلات میں بار بار اس لفظ کو دیکھا تھا. تو ویل کا لفظ جو ہے اصل میں بہت شدید ہلاکت، تباہی، بربادی کے لیے، یعنی ایک بدعائیہ کلمہ بھی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہلاکت ہو ان کے لیے. اور جس کے لیے ویل کا لفظ آ جائے اس کا مطلب ہے اس کو آخرت میں بہت شدید عذاب ہونے والا ہے. دوسری بات، ابن عباس فرماتے ہیں کہ ویل جو ہے وہ جہنم کی وہ وادی ہے جس میں جہنمیوں کی پی پس وغیرہ جو ہے وہ بہہ کے آ جائے گی. تو یہ سب سے پہلے تو یہ لفظ ہی بہت ڈرا دینے والا ہے کہ ویل ہے، تو انسان ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن کے لیے ویل ہے. للمطففین، مطففین کے لیے. مطففین کون لوگ ہوتے ہیں، پہلے تو یہ بات دیکھنے کی ضروری ہے کہ کن لوگوں کے لیے اتنی بڑی وعید سنائی گئی. तो देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि तथ्फीफ कहते हैं छोटी सी चीज के अंदर कमी करना, असल में तफ कहते हैं बहुत मामूली सी चीज को, खफीफ सी चीज को। तो तफीफ तथ्फीफ उसको कहेंगे जो छोटी सी चीज में डंडी मार जाए। तो पहले तो हम ये समझें कि कोई बहुत बड़ी करप्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बहुत हकीर चीज या छोटी चीज, या जिसको कहते ना लो इससे क्या फर्क पड़ता है, इतनी सी बात। मिसाल के तौर पे आप किसी को नोट तो देते हैं, लेकिन जैसे कॉइन्स देना, ये बहुत छोटी चीज है ना, उसको ये वो इतनी बड़ी चीज नहीं। अगर उसमें कोई कमी बेशी भी हो जाए तो वो इसको कुछ समझा नहीं जाता। तो यहां पे कहा गया वैल, ये मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे रही हूं कि वैल है मुतफिफीन के लिए जो के नाप तोल में कमी बेशी करते हैं, उनके लिए वैल है। तो अब हम देखते हैं आगे, जरा बात को देखते हैं आयत नंबर 3 तक, तो हमें ज्यादा समझ आएगी कि कौन लोग होते हैं मुतफिफीन। उसकी डिस्क्रिप्शन आगे दी जा रही है, अल्लदीना, ये वो लोग होते हैं इदक्तालु आलन नास, जब नाप कर लेते हैं। इकतालु एक थे कालू, जैसे अगली आयत में आया है, लेकिन इकतालु है लेने के लिए आता है, कि जब लेते हैं आलन नास, मीनन नास नहीं, लोगों से होना चाहिए था, लेकिन जब आलन नास है तो इसके अंदर जरा जिसको कहते हैं धौंस या प्रेशर या किसी को बुली करना, इस तरह के माना आ जाता है ना, किसी को पुश करना बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर, किसी के ऊपर मुसल्लत हो जाना, आला है ना, अपॉन होता है। तो आलन नास ही यस्तफून, तो वो पूरा पूरा लेते हैं, यानी उनका कैरेक्टर कैसा है कि जब वो किसी से कोई चीज लेने लगते हैं तो उस वक्त लेते वक्त वो धौंस जमा के, अपना हक जमा के, और बड़े धड़ल्ले से, और बड़ा दूसरे को प्रेशराइज करके कहते हैं नहीं नहीं इतना इतना भी निकालो, इसमें भी क्यों कमी की। यानी आप बिल्कुल चाहते हैं, जिसको हम अपने मुल्क में ज्यादातर ये चीज करते हैं, जब कपड़ा वगैरह लेने जाते हैं ना तो कहते हैं जरा बढ़ा के काटना, वो अब वो ना एक दो, एक उंगली तक या 1-2 इंच तक ना वो बढ़ा देता है, फिर वो वहां से काटता है। तो यानी जब अपना हक लेने लगते हैं ना, तो फिर इतने धड़ल्ले से उसको प्रेशराइज करते हैं, नहीं तुमने ऐसे क्यों किया, और ये यहाँ पे कमी क्यों कर दी तुम, इतना दो मुझे, छोटी छोटी चीज को भी लड़ते हैं उसके पीछे, और मैनेजर को अपने बुलाओ मैं उससे बात करूंगी, और यहाँ पे ये क्यों ऐसे है, और या कोई चीज रिटर्न करनी है तो ये क्यों नहीं तुम मुझसे ले रहे, या इस चीज के अंदर ये कमी थी अब मुझे एक और इसके बदले में ऐसी ही चीज दो तुम। यानी अपना हक लेने में ना बहुत ज्यादा एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं जब अपनी बात आती, अपने लेने की बात आती। वह इधर कहलू हम, और जब नाप के देते हैं दूसरे को, अव वजन, देखें दो ही पैमाने होते हैं ना, या तो आप किसी को नाप के देते हैं या तोलते हैं, वजन करते हैं उसका। नाप के देने के अंदर मसलन है कि आप कपड़ा नापते हैं, या आप कोई और चीज, कोई भी मेजरिंग की चीज है वो आप मेजर करके उस तरह से देते हैं, और कोई चीजों का आप वजन करते हैं। आप नापने में ये भी आ गया ना, जब आप यानी गिन के देते हैं, मसलन हमारे मुल्कों के अंदर केले वगैरह दर्जन, 2 दर्जन, इस तरह के लिहाज से देते हैं, और जब फिर या फिर वजन करके देते हैं कोई चीज का, कोई वजन के लिए वो मीजान होता है, उसमें एक बट्टा रखते हैं और दूसरी तरफ चीज रखते हैं, फिर वो करके देते हैं, या आजकल वेइंग स्केल्स हैं उनके ऊपर आप रख देते हैं और फिर उसके ऊपर नंबर आ जाता है। युख्सिरून, घटा कर देते हैं, यानी जब नापने लगते हैं या तोलने लगते हैं किसी को देते वक्त, उनका क्या हाल होता है कि तब कम कर देते हैं, या तो चीट कर लेते हैं ऐसे कि वो स्केल ही ऐसा बना देते हैं, मसलन पेट्रोल पंप है उसके ऊपर वो जो नंबर होते हैं वो इतनी तेज चल रहे होते हैं, हो सकता है कि तेज किए हैं पीछे से, या फिर वो जो वजन वाली वो करने वाली मशीन है उसको यानी ऐसे कर देते हैं कि जितना वजन है, मसलन 1 किलो है तो 1.1 किलो चीज है तो 0.75 चीज को वो करेगा, यानी उसको कम करके देना होगा, उसको ज्यादा करके दिखाएगा, तो 0.75 की चीज को 1 किलो दिखा देगा, ठीक है, 1 किलो की चीज को 1.5 किलो दिखा देगा। या 1.5 किलो तो जरा ज्यादा है, लेकिन मतलब थोड़ी सी उसके अंदर ना ऐसी करके कमी कर लेते हैं कि वो चीज उतनी होती नहीं है, लेकिन उसको यानी बढ़ा के दिखा दिया। आप क्या उसको जब दे रहे हैं तो कम दे रहे हैं, लेकिन पैसे आपने उससे किलो के लिए, जबकि वो किलो से कम थी चीज, लेकिन आपने स्केल उसको ऐसा बनाया था कि वो किलो नजर आ रही है। अब मिठाई है, अब कोई गोश्त है, या फिर ये जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोल वगैरह है, मीटर उसका चल रहा है, या टैक्सी है उसका मीटर तेज चला दिया। इस तरह से कई चीजें हैं ना, अब जहां पे भी ये मेजरिंग की बात आती है या नाप के देना है, कोई कपड़ा काट रहे हैं तो उसके अंदर इतना खींच के उसको किया कि वो, या फिर जो वो मीटर बनाया हुआ है आपने, गाजिया मीटर जो हमारे पास चलता है, उसको ऐसा कर लिया कि वो ही जरा थोड़ा सा बड़ा करके रख दिया और उसको उस तरह से नापा के लोग समझें कि मैंने 2 मीटर लिया, हालांकि वो 2 मीटर नहीं है, अब वो 1.9 मीटर है। मुतफिफीन की बात हो रही ना, मामूली सी डंडी मारते। या फिर दूध बेचने वाला है तो हमारे दूध के भी वो होते हैं कि भाई वजन करके, वजन नहीं तो वो किलो के लिहाज से देते हैं, तो किलो का एक उन्होंने कप बनाया होता है, वो उसके अंदर, वो उस कप के अंदर नाप के और फिर उसको देते हैं। तो अब वो अगर मसलने के ज्यादा बड़ा बना दिया तो या छोटा बना दिया है, तो अब उस तरह से वो उसके अंदर गड़बड़ ऐसा करेंगे कि वो चीज उतने वजन की नहीं है, लेकिन लग रही है कि ये इतनी हो गई। तो जब छोटा बनाएंगे तो जाहिर ही बात है वो समझेगा 1 किलो हो गया, लेकिन 1 किलो नहीं था, 1 किलो से थोड़ा कम था। तो यानी कहने का मकसद ये है कि वो लोगों के हकूक मार लेते हैं इस तरह, लेकिन जब अपना हक लेना होता है ना तो फिर इतने पुशी हो जाते हैं, फिर एक दाना दूसरे से निकलवाते हैं, उसमें उनकी हिरस होती है कि जरा भी ना कमी हो, फिर दोनों जमा जमा के दूसरे से लेते हैं। वो जी हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, ये देखो ये इतना नहीं है, ये कैसी मशीन बनाई है ये। अब ये दोनों साइड्स पे हो सकता है, सेलर और बायर दोनों में से कोई भी ये कर सकता है। जब बायर भी है, जब खरीदने के लिए चीज जाते हैं तब तो ऐसे बन जाते हैं, लेकिन जब आपने कोई चीज बेचनी होती है तो तब उसमें क्या करते हो। इसी तरह गाड़ियों का ऑडोमीटर होता है, जिसपे वो आता है कि भाई गाड़ी कितनी चल गई है, उसके अंदर मसलन है कि 10,000 मील चली रही है एक गाड़ी, अब उसको यानी स्लो कर दिया या रोक दिया जो भी उसको करते होंगे, तो अब वो दिखा रही है कि ये तो 8,000 मील चली है। अब 8,000 मील चली हुई गाड़ी की प्राइस जाहिर है ज्यादा है और 10,000 की कम हो जाती है, जितनी ज्यादा चलेगी उतनी कम हो जाएगी। अब क्या करते हैं बेचने वक्त वो कौन सी कीमत ले रहे हैं 8,000 वाली, हालांकि ये तो 10,000 चली गई। अब एक चीज हो गई ना कि जिस वक्त आपने दूसरे को दिया तो उसका हक मार लिया। इसी तरह जब मिलावट करते हैं तब क्या होता है, मिलावट में भी चीज जो होती है, मसलन है आप मिलावट कर दी दूध में, मसलन पानी मिला दिया, मिर्चों में ईंटें कूट के डाल दी, किसी और चीज में क्या कर दिया, तो अब क्या कर रहे होते हैं, उसने जो आपको कीमत दी है वो मिर्चों की दी है कि 1 किलो मिर्चें की, अब उसमें किलो मिर्चें नहीं है, उसमें मसलन 0.1% ईंटें कूट के डाली हुई है, ये है तथवीफ। इतनी सी चीज के अंदर भी कमी कर लेना। आप सरसल मदीना आए तो अहले मदीना नाप तोल में बहुत ज्यादा ऐसे करते थे, जब ये आयत सोचे उतरी होगी तो उनपे क्या गुजरी होगी कि वैल है ऐसे लोगों के लिए, तो उन्होंने फिर अपने आप को सही किया, उन्होंने अपने कामों को अपने नाप तोल में जो कमी बेशी करते थे उसको तर्क कर दिया। अब एक आदमी को इब्ने उबर फरमाते हैं, एक आदमी किसी नाप तोल करने वाले को मुलाजिम रखता है और उसको पता है कि ये नाप तोल में कमी करता है, तो उसका गुनाह उसके ऊपर होगा, जबकि उसको पता है ना कि मेरा मुलाजिम कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा, ये नाप रहा है तोल रहा है, मैंने इसको रखा हुआ है, मालिक को पता है कि ये करता है, लेकिन वो उसको फिर भी रखे हुए है, इज ओके विद दैट, तो उसका गुनाह उसके ऊपर भी है तो उसके ऊपर भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीजों का फरमाया था कि 5 चीजें जो हैं ऐसी हैं कि जो उनमें मुब्तला होगा उसके ऊपर ये 5 अजाब आएंगे। जिस कौम में बेहयाई होती है ना उनमें ताऊन फैल जाता है, वो बीमारियां फैलती हैं कि जिनका लोगों को पहले कभी पता ही नहीं था। अब जैसे एड्स है, एड्स पहले तो होती ही नहीं थी, लेकिन ये बेहयाई की बीमारी है। फिर जिस कौम में नाप तोल में कमी होती उस पर अल्लाह ताला कहत नाजिल फरमा देते हैं, इफलास भूख और जालिम हुक्मरान उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। फिर हम शिकायतें करते हैं कि देखो कैसे हमारे ऊपर हुक्मरान है और ऐसे हैं। हम ये नहीं देखते कि आपसे सलम ने तो फरमाया जब तुम तो नाप तोल में कमी बेशी करोगे तो ये होगा, और हर जगह पे हो रहा है। किसी जगह पर आप नहीं इत्मीनान कर सकते कि यहां पे मुझे पूरा पूरा अपनी चीज मिल गई है। हर जगह पर कहीं कमी की होती है, बल्कि अब तो ये कि शैंपू उठा लो उसके अंदर कुछ मिलावट की हुई है, दूध लेने जाओ उसके अंदर मिलावट है, मसाले लेने जाओ उनके अंदर मिलावट है, कोई फूड खाने जाओ रेस्टोरेंट के अंदर उसके अंदर किसी और चीज का मुर्दार का या किसी और चीज का गोश्त डाल के वो दे रहे हैं, आटे के अंदर पता नहीं क्या क्या मिलाया होता है वो भी चीजें, यानी इतनी आप खबरों में सुनते हैं हर आए दिन कि हमारे बाजारों में क्या हो रहा है, कौमे शुएब की किस वजह से लुट गई तबाह हो गई। तो अब खुद सोचें कि उसके बाद हमारा क्या हाल है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग अपने अम्बाल की जकात नहीं देते वो बारिश से महरूम हो जाते हैं, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ते हैं उनके ऊपर दुश्मन को मुसल्लत कर दिया जाता है और उनके हाथों से माल छीन लिया जाता है, और जो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते और किसी और के फैसले को तरजीह देते हैं अल्लाह के फैसलों पर, अल्लाह ताला इनके अंदर दुश्मन का दूसरे का खौफ पैदा कर देता है। तो यानी हमने यहाँ पे क्या देखा इस हदीस में कि नाप तोल में कमी बेशी कहत को आवाज देती है, भूख इफलास गुर्बत और जालिम हुक्मरान आ जाते हैं, और हम अपनी सोसाइटीज में ये देख लें। अच्छा अभी हम देखें कि जो शर्म आती है कहते हुए कि गैर मुस्लिम फिर भी इस मामले के अंदर परफेक्ट तो नहीं किसी को भी कह सकते लेकिन बेहतर है नाप तोलने में और इस तरह करने में, इसीलिए हम उनके प्रोडक्ट्स को लेना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि हमारे अपने मुल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इनके अंदर हम मसाला लिया हमें पता नहीं है ये कूट के क्या डाला हुआ इसके अंदर, हम खुद भी नहीं भरोसा करते और हम कहते हैं कि नहीं हम वो इम्पोर्टेड चीज लें। इम्पोर्टेड चीज क्या है असल, इम्पोर्टेड चीज तो मतलब वही होता है कि यानी जो बाहर का सामान है वो ले लें, क्योंकि इन्होंने ठीक डाला होगा, इन्होंने जो इंग्रेडिएंट लिखे हैं वो वही होंगे, कुछ और नहीं किया होगा, आप पीछे पढ़ लेते हैं इंग्रेडिएंट्स वही चीज होगी, वो आपको बता भी देते हैं जब आप उनसे पूछते हैं, लेकिन मुसलमान हो के हमारे हालात क्या है। तो ऐसे लोग इनके लिए हलाकत है। अब ये बड़ी करप्शन की भी बात नहीं हो रही, अरबों खरबों तो हम वैसे ही निगल जाते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि छोटे चोर को पकड़ा जाता है, बड़े चोर को तो कोई पकड़ता ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ अगर मुत्तफिफीन का ये हाल है कि उनके लिए वेल है, तो इमेजिन करें कि जो बड़ी बड़ी करप्शंस हैं लोगों के हक मारे में है खाए में है उनका क्या हाल होगा। ये दुनिया में की गई बेईमानियां कहीं जाके निकल जाएंगी, चाहे आज कोई नहीं भी पकड़ रहा, अब ये छोटी सी जो तथफीफ करता है ना इसका ज्यादा पता नहीं चलता, ज्यादा नहीं पता चलता इसलिए कि वो करता जाता है छोटा 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 छोटा, अब छोटा छोटा कर करके उसने शायद दुनिया में कुछ कमा लिया हो कुछ बना लिया हो लेकिन आखरत में उसके लिए वैल है। सोचे अब कहने को वो इतना छोटा है कि दूसरा कहेगा अच्छा तो अब इतना सा भी तुम्हें चाहिए, और ये जो मांगने वाला है वो भी कहेगा कि लो इससे भी मतलब शर्म आती है कहते हुए भी कि क्या पता चला था, एक चोर एक दफा पकड़ा गया था उसने बैंक से हर एक के अकाउंट से कोई शायद 1 या 2 सेंट सिर्फ यानी निकाले हुए थे और उससे ही उसने पता नहीं कितने बना लिए थे। तो तथफीफ जो होती है वो होती मामूली चीज की है लेकिन जब इंसान उसको करता रहता है और हर एक के साथ करता रहता है तो वो सोचता है कि मैं बड़ा मालदार बन गया हूं और मुझे कोई पूछने वाला नहीं है और कुछ नहीं, अल्लाह ताला इस चीज के ऊपर भी निगरानी रखे हुए है। इंसान आज कोई चीज कर लेगा, मिसाल के तौर पे एक बंदा है डॉक्टर है या मैकेनिक है या कोई और एक ऐसा शोभा जिसके बारे में लोग इतना नहीं जानते, या इलेक्ट्रिशियन है प्लम्बर है, अब दूसरे को जो उसका कस्टमर है उसको खाक पता है कि ये भाई जो मुझे कह रहा है ये ठीक भी कह रहा है कि नहीं, अब उसके पास आप गाड़ी लेकर गए या उसके पास आप अपने को इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, आपने कहा भी ये ठीक कर लो, उस बेचारे को क्या पता ये इसमें ये चीज है भी या नहीं जो ये बता रहा है। उसने कहा नहीं जी इसमें तो बहुत बड़ा काम निकल आया है, ये तो इतने इतने का काम होगा, हालांकि वो उतने का था भी नहीं और वो तो एक मामूली सा काम है, लेकिन इसने उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा बता दिया और उससे उसके पैसे ले लिए जबकि वो काम छोटा सा था। ये क्या है, ये तो हर बड़ी बेईमानियों में ही आ गया, ये तो आम ही होता है। अभी तो यहां पे मुत्तफिफीन की बात हो रही है, इसके ऊपर आप सोच लें कि जो बड़ी बड़ी चीजें उनके अंदर क्या हाल होता होगा, उनके ऊपर कितनी बड़ी सजाएं होंगी। जब छोटी छोटी करने वाले को अल्लाह ताला ने इस तरह उसका हाथ पकड़ लिया कि नहीं उसके लिए भी वेल है, ये छोटी नहीं रहती। जब कौमों के अंदर ये चीज होती रहती, वो पूरी कौम अपना ट्रस्ट खो देती है, क्योंकि पूरी कौम का नाम बदनाम हो जाता है, कोई उनसे चीज इम्पोर्ट नहीं करना चाहता, कोई उनसे लेना, उनके अपने लोग नहीं ट्रस्ट करते, हम अपने मुल्क के लोग चीजों के ऊपर खुद नहीं ट्रस्ट करते, कोई और क्या बाहर से आके लेगा। तो बेईमानी है इसमें, धोखा है इसमें, झूठ है इसमें, खयानत है इसमें, सब चीजें हैं इसके अंदर। इसी तरह अब हम कहें हम तो दुकान पे बैठे नहीं हुए, या तो आप खरीदार भी हो सकते हैं ना, देखिए अगर आप बेच नहीं रहे तो खरीदने वाले तो हो सकते हैं, कभी तो आप बेचेंगे भी, खरीदते वक्त तो हम अपनी इतनी धौंस जमाएं कि हम इतना सा भी किसी को यानी वो ना दे, लीवे ना दे, इतना सा भी किसी को जाने ना दे लेते वक्त अपना हक, लेकिन देते वक्त हमारे लिए हो कि हम कहीं से थोड़ा सा कम कर ही लें, कहीं से दो चार आने भी बचा ही लें, कहीं से ऐसे नाप तोल करें कि वो हमारे पास कुछ थोड़ा सा बढ़ता हुआ आ ही जाए और इसको थोड़ा कम ही कर दें। ये नहीं है कि ये बुरी बात है अपना हक लेना, ये जो दूसरी आयत है ना लदीना दत्तालवारनास, ये कोई बुरी बात नहीं है कि अपना हक लेना बुरी बात नहीं है, अपना हक पूरा पूरा लेने में कोई हर्ज नहीं है। और इससे लेकिन फिर इसको क्यों कहा गया, यानी एक तो कंट्रास्ट दिखाने के लिए कि जब ये करते हो तो अपने लिए क्या चाहते हो और दूसरे के लिए क्या चाहते हैं, जब अपने लिए चाहते हैं पूरा पूरा तो दूसरे के लिए कम करके क्यों देते हो, कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लो अगर तुम्हें तुम्हें 2 रुपए कम भी दे दे तो क्या हो गया, या तुम्हारे से मैंने 10 लिए थे मैंने तुम्हें 9 भी दे दी तो बस 1 रुपए के पीछे तुम इतनी दीवानी हो रही हो, एक से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, जब खुद लेने लगते तो तब तो तुम कभी नहीं ये सोचते, तब तो तुम पूरा पूरा अपनी दोस्त जमा के लेते हो। तो ये बताया गया कंट्रास्ट कि देखो जब आ, 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 लेने के पैमाने और देने के और, अपने लिए कुछ पसंद और दूसरे के लिए कुछ पसंद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मोमिन नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक कि दूसरे के लिए वो ना पसंद करो जो अपने लिए करते हो। ये सिर्फ इस चीज के अंदर नहीं है कि कोई सलूक करना किसी के साथ, बल्कि इस चीज के लिए भी है कि हर चीज के अंदर जब भी मामला करना हो अपने लिए हम पसंद करते हैं कि हम अपने लिए पूरा पूरा हमें दिया जाए, कोई नहीं चाहता मुझसे धोखा किया जाए, कोई नहीं चाहता मुझे ऐसी चीज दी जाए जिसके अंदर मिलावट की गई हो, कोई नहीं चाहता मुझे ऐसी चीज दी जाए जिसके अंदर कमी की गई हो, लेकिन जब देने लगते हो तो तब तुम ऐसे करते हो। अगर तुम्हें भी कोई ऐसे दे तो तुम गवारा ना करो, लेकिन देते वक्त तुम ऐसे ही करते हो, ये दूसरों के साथ तो धोखा कर रहे हो अपने साथ धोखा नहीं पसंद करते। तो कंट्रास्ट है ना ये कि भाई अपने लिए कुछ पैमाने दूसरे के लिए कुछ पैमाने, देने के लिए कुछ और लेने के लिए कुछ। अब इसको आप सिर्फ दुकानदारी की सूरत में ना देखें बल्कि इसको हर मामले में देखें, हकूक के मामले में भी देख लें। हकूक के मामले में जब हम हक देने लगते हैं, ये तदफीफ सिर्फ पैसों की नहीं है, हक की भी हो सकती है, कि जब हम देने लगते हैं हक तो फिर कैसे देते हैं, और जब लेने लगते हैं तो फिर कहते हैं मेरा हक है, ये मेरा हक है। और हकूक की तो आज जंग बहुत है ना, औरतों के हकूक, बच्चों के हकूक, फलां के हकूक, जानवरों के हकूक, फलाने के हकूक, हकूक लेने में बहुत चीखते हैं, बहुत आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन जब हक देना होता है तब भी याद होता है कि ये इसका हक है, मुझे हक देना भी तो है, दूसरों से तो बहुत एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जब खुद करना होता है तो फिर अपने से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अब हकूक देने लेने में आप देख लें, चाहे वो शौहर का हकूक होगा, चाहे वो हमसायों के हकूक होंगे, चाहे वो और रिश्तेदारों के हकूक होंगे, आप हक देने में कैसे हैं और लेने में कैसे हैं, कोई हमारे हक में जरा सी कमी करते तो हम कितना बोलते हैं, लेकिन जब हमने हक देना होता है तो क्या वैसे देते हैं? फिर इसी तरह आप देखें अपने मामले में क्या पसंद करते हैं और दूसरे के मामले में क्या पसंद करते हैं। मसलन है कि मेरी बहू है तो उसके लिए मैं क्या पसंद करती हूँ और बेटी के लिए क्या पसंद करती हूँ। अपनी बहू के लिए तो मैं वो नहीं पसंद करती जो बेटी के लिए कर रही थी। बेटी के लिए तो चाहती हूँ कि उसका ससुराल उसको सर पे उठा के रखे और उसका शौहर भी उसको शहजादी बना के रखे और वो तो इतनी बस अपने घर में राज करे। लेकिन जब बहू है तो फिर ये नहीं दिल चाहता कि मेरा बेटा इसके आगे पीछे फिरे। ये क्या हो गया, जन मुरीद बन गया, तू ऐसा हो गया, इसकी बहुत सुनने लगा। लेकिन बेटी के मामले में चाहते हैं कि उसका शौहर उसकी बहुत सुने, उसके ससुराल वाले उसको बहुत पूछे, कि हम अपनी बहू को नहीं पूछ रहे होते। देखिए ना आप, हम कहाँ कहाँ रिश्तों में डंडियां मारते हैं ना। फिर हमें वो चीज पसंद नहीं आती अपने अपने जो उसके लिए जो हमारे अपने प्यारे रिश्ते होते हैं उनके लिए वो चीज पसंद नहीं आती, दूसरों के लिए वही चीज कर रहे होते। अपनी वालदा के लिए मैं चाहूं कि मेरी भाभी तो उनकी बहुत खिदमत करें, लेकिन मैं अपनी सास के लिए बिल्कुल ऐसे हूं कि मुझे परवाह भी नहीं। तो हम हर जगह पर देख लेना कि कैसे सलूक कर रहे हैं, हम किस तरह से देखते हैं। जब हम अपने मैके जाते हैं, खवातीन अपने मैके जाती हैं तो चाहती हैं कि भाई भाभी मेरे बस आगे पीछे हों और इनको मुझे पूछना चाहिए, आखिर मैं आई नहीं हूँ और मेहमान हूँ। लेकिन जब मेरी नंद मेरे घर आए तो मैं कहूँ कि अच्छा भाई क्या मुश्किल है, क्या मुसीबत है, इतने दिन के लिए आगे बैठ गए। तो देखें आप सब चीज़ों में आप इसी को कयास कर लें, चाहे वो रिश्तों का मामला हो, चाहे वो पैसों का मामला हो, हकूक हो, या फिर माल का इंटरसेक्शन एक्सचेंज हो, वो हर एक चीज के अंदर आप देख लें कि मैं कहाँ कहाँ पे जब दूसरों के साथ मामला करने लगती हूँ तो कमी कर देती हूँ, लेकिन अपने मामले में ना मैं पूरा पूरा चाहती हूँ कि कहीं कमी ना हो। मुझे अच्छी तरह भी मिलना चाहिए, मुझे पूरा पूरा भी मिलना चाहिए। हम वालदेन होते ना, अपने बच्चों के बारे में हम क्या सोच रहे होते, और दूसरे का बच्चा हो, चाहे वो हमारा दामाद हो, चाहे वो हमारी बहू बन के आए, चाहे वो हमारे बच्चे क्लास में और कोई बच्चे हैं, चाहे वो हमारे दोस्तों के बच्चे हैं, उनके बारे में हम क्या चाहते हैं? तो मोमिन तो हो ही नहीं सकते जब तक कि दूसरे के लिए ना वो पसंद करें जो अपने लिए करते हैं। हम सब कुछ सारी खैर अपने लिए चाहते हैं, उसमें बहुत हरीस है, लेकिन दूसरे के लिए बहुत बखील है। इसको कोई खैर ना मिल जाए, इसको बस ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये मामलात सिर्फ बाजारों में नहीं हो रहे, घर भर घर घर में हो रहे हैं, घर घर में लोगों के हक मारे जा रहे हैं, घर घर में लोगों के साथ ऐसे सलूक किए जा रहे हैं जो हम अपने लिए पसंद नहीं करते। इसी तरह जब हम झूठ लिख देते हैं, झूठ लिख के हम कोई ऐसे बेनिफिट्स ले लेते हैं जो हमारा हक नहीं बन रहा था, तो वो क्या है, वो भी तो थीफ है। इसी तरह हमें किसी जॉब पे रखा गया, हम उससे पहले, ये तो मैंने खुद भी देखा है, यानी अगर छुट्टी का टाइम 5 बजे का है ना, तो 4:45 से ही अपना सामान बंद करके मैंने देखा कि लोग बैठ गए हैं और फिर वो बस इंतजार कर रहे हैं, बस घड़ी देख रहे हैं, जूं ही 5 बजेंगे उसी वक्त, यानी बैग बंद करने की भी ना टाइम लगे, उससे पहले ही खड़े हो जाएंगे कि इधर, जैसे कि अलार्म नहीं होता, इधर उठे और उधर एलिवेटर तक भी पहुंच गए, बाहर भी निकल गए, क्योंकि 5 मिनट तो जाने में ही लग जाने, तो 5 मिनट पहले ही जरा उठ जाया जाए, नीचे पहुंचने में ही लग जाएंगे तो जरा पहले ही उठे। तो ये तथवीफ नहीं है, 4:45 से ही काम बंद कर लिया। अब अगर 4 बजे छुट्टी होनी है, आप देखिए सड़कों पे कितना रश होता है, 3 बजे से ही अगर रश हो गया तो इसका मतलब लोग घंटा पहले ही निकल खड़े हुए, नहीं रश हो जाएगा ना फिर रश मिलेगा, तो इससे पहले ही निकल खड़े हो। जबकि उन्होंने आपको ड्यूटी पे आवर्स उन्होंने आपके रखे हुए 9 to 5, आपके वो अगर 5 बजे तक आवर्स हैं तो आप 4:45 तो नहीं निकल सकते, 5 मिनट पहले भी नहीं, लेकिन 5 मिनट से क्या होता है, 5 से क्या होता है, चलो 4:45 नहीं निकलते हम, 5 मिनट से क्या हो गया, देखो 5 मिनट तो नीचे जाने में ही लग जाएंगे ना, तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ये भी तथवीफ है, किसी ने आपको किसी काम के लिए हायर किया कि ये जॉब करो, इतनी इतनी करनी है, आपने उसमें डंडी मार दी, तो जॉब को उस तरह नहीं किया। और आज कितना मुश्किल है, इसीलिए तो किसी को डंडा लेके सर पे खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि हर जगह ये हो रहा है। बल्कि छोटी चीज की तो छोड़े कमी, बड़ी बड़ी चीजों में की जाती। वो काम वैसा है ही नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया। आप एक सफाई वाली रख लें या कोई भी रख लें, आप देख लें फिर। आप ना देख रहे हो, पैसे उन्होंने पूरे घर के साफ करने के यहां से छोड़ दिया, वहां से छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि अब कोई देख जो नहीं रहा। तो मुतफिफिन वही तो होते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह ताला की नजर का डर हो, फिर वो नहीं करेगा। उसके ऊपर आपको किसी को खड़ा करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर अल्लाह ताला की हकूक के ऊपर देखा जाए, तो उसमें भी तदफीफ करते हैं। चाहते तो ये कि हमें हर चीज मिल जाए, इधर मैं दुआएं करूं उधर मेरी दुआएं पूरी हो जाए। हाय हाय, मैं तो इतनी देर से दुआ कर रही थी, मेरी तो दुआ ही नहीं कबूल हुई और मेरी तो दुआएं सुनी ही नहीं जाती। लेकिन जब अल्लाह ताला की इबादत करने का वक्त आए, जब उसके हुक्मों को मानने का वक्त आए, तो हम डंडियां मारते। और तो और वुजू तक में हम डंडी मार लेते। क्या है, पैर धोने हैं, एड़ियां खुश्क रह गई। नमाज पढ़ रहे हैं, ना रुकू सही ना सजदा सही, बस उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, तेज 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 तेज। नमाज की चोरी है ये, क्या उसमें कमी नहीं की? चोरी कमी करना ही तो होता है, तो कमी कर ली ना उसमें। हिजाब ले लिया लेकिन फुल मेकअप करके हम चले गए, हमने कर तो लिया है पर्दा, ये कमी कर दी ना आपने। तो हम देखें, हम अल्लाह ताला के हकूक में भी कहाँ कहाँ कमियां कर रहे हैं। उसका हक तो ये है कि उसकी हर बात को माना जाए, लेकिन हमने बस काम करके भी दे रहे हैं लेकिन पूरा पूरा किया ही नहीं, उसमें डंडियां मारते जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये पूरी जिंदगी को ये कवर कर लेता है। ये किधर किधर हम कैसे कैसे कमियां करते जा रहे हैं, और सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या हो जाएगा। लो भला अल्लाह ताला कोई इतनी इतनी चीजें देखेगा। नहीं, हम सोचते कि तो छोटी सी चीज है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई अल्लाह ताला इतनी सी चीज पे पकड़ लेगा। हंसते हैं इस बात पे, अगर कोई बताए तो हम हंसते हैं कि भला इतनी सी चीज का क्या फर्क पड़ता है, लो भला अल्लाह ताला ने इसके ऊपर पकड़ना है। जबकि यहां पे है वैलुल लिल मुतफिफीन, मुतफिफीन होते ही वो हैं जो छोटी सी चीज में कमी करने वाले होते हैं, छोटी छोटी चीजों में धोखा देते हैं। अब चाहे जॉब करने वाले हों, चाहे बिजनेस करने वाले हों, ऐसे ही तो नहीं जो अमानतदार बिजनेसमैन है वो उस दिन कयामत के दिन अंबिया के पास साथ होगा, क्योंकि वो ये बहुत ही मुश्किल चीज है जब आप कारोबार कर रहे होते हैं, उसके अंदर इतनी ईमानदारी से चलना कि जरा सी चीज भी आगे पीछे ना हो, जरा सा भी झूठ ना हो, जरा सा भी धोखा ना हो, जरा भी बोली बढ़ाई ना जाए। तो चाहे आप जॉब वाले हैं, चाहे आप बिजनेस वाले हैं, चाहे आप अल्लाह ताला के हकूक देने वाले हैं, चाहे आप बंदों के हकूक देने वाले हैं, कहते नहीं 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 बंदों के हकूक अल्लाह ने नहीं माफ करने, अपना हक तो वो माफ ही कर देगा। जैसे कि हमने बड़ा फ्री हैंड ले लिया, कहाँ पे आपको ये कहा गया कि अल्लाह ताला ने अपने हकूक तो वैसे ही माफ कर देना, इसलिए उनको तो कुछ समझो ही ना, डंडियां मारते जाओ। आप बंदों के हकूक यानी वो तो मैं पूरे पूरे दूंगी, लेकिन अल्लाह ताला का हक तो, अल्लाह हु अकबर, आपके ऊपर सबसे बड़ा हक किसका है? अल्लाह ताला का है। सबसे ज्यादा एहसानात किसने हैं? कि अल्लाह ताला के हैं। आपको पैदा किसने किया? अल्लाह ताला ने। और हमें शर्म नहीं आती फिर भी ये कहते हुए कि अल्लाह का हक दे ना दे, बंदों के जरूर दे दो। अल्लाह ताला का हुक्म टूटे तो टूटे, बंदे का हुक्म ना टूटे कि उसने मुझे कह दिया कि आज नाचने खड़ी हो जाओ, तो लेकिन चूंकि वो शौहर है तो इसलिए अगर उसने कहा कि पार्टी में नाचो तो मैं नाचूंगी, अगर उसने कहा हिजाब ना लेके जाओ आज मेरे साथ, मैं नहीं लूंगी, क्योंकि देखे ना शौहर का हुक्म है ना, उसका हक अल्लाह ने रखा है ना। अल्लाह ताला को हुक्म टूट जाए वो कोई बात नहीं, वो तो अल्लाह ताला ने माफ ही कर देनी। फलां लोग हमें पार्टीज पे बुलाते हैं, ऐसी पार्टीज में जहां पे बेहयाई हो रही है, अल्लाह का हुक्म तोड़ा जा रहा है। हाँ, लेकिन देखिए ना, दावत को रिजेक्ट थोड़ी कर सकते, ये तो फिर कहा गया ना इस्लाम के अंदर है दावत को कबूल करना, तो वहां पे तो हम जरूर जाएंगे, चाहे अल्लाह ताला का हुक्म टूट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसका दिल ना टूट जाए कहीं, दिल टूट गया तो फिर क्या होगा? तो मैंने दिल नहीं तोड़ना, वो तो गुनाह होता है ना दिल तोड़ना किसी का। अल्लाह ताला का हुक्म टूटे तो कोई मसला नहीं। तो ये हमारे पैमाने हैं, इस तरह से हम डीलिंग्स करते हैं, कहाँ कहाँ हम अपने लिए क्या चाहते हैं और दूसरे के लिए क्या चाहते हैं, कहाँ कहाँ हम देते वक्त कैसे देते हैं और लेते वक्त कैसे लेते हैं, इवन तोहफे तक देने में हम अपने लिए क्या चाहते हैं, हमें कोई कैसा तोहफा दे और दूसरों को कैसे देते हैं। अब दूसरों की बारी आती है, तो जिंदगी के हर फेज में आप उठा के देख लें कि ये बेईमानियां चल रही हैं, ये बेईमानियां हो रही हैं, और ये तभी होती हैं जब इंसान के अंदर लालच बहुत हो, दुनिया का खुद गर्जी हो, सेल्फिश हो वो, और दुनिया की मोहब्बत बहुत ज्यादा हो, इतनी मोहब्बत कि उसका जब उसको दिल चाहता है कि सारी दुनिया बस मुझे मिल जाए, इतना लालच है। जाहिर है जब मोहब्बत है तो उसका ग्रीड तभी आती है ना जब मोहब्बत बहुत ज्यादा होती। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया इसके बाद कि इनका कॉज क्या है, और क्या ये नहीं सोचते जब हर जगह पे ऐसे हो रहा है तो क्या ये नहीं सोचते अला यदुन्नु लाइका अन्नहुम मबऊसून, कि इनको यकीन नहीं है कि इनको उठाया जाने वाला है। अब देखिए काफिर को तो पहले ही यकीन नहीं, इसलिए तो उसको ये कहने की बात ही नहीं बनती ना, ये काफिर को हम कहेंगे तुम्हें यकीन नहीं है कि तुमने उठाया जाना, तो तुम ये कैसी बेईमानी कर, उसको तो है ही नहीं यकीन, आप किसको ये बात कहेंगे, वो जो कहता है मुझे यकीन है, फिर उसके बाद ये काम कर रहा है, तो ये काम करने बताते हैं अगर कोई इस कामों के अंदर है तो इसका मतलब है इसको यकीन नहीं है कि अल्लाह के आगे एक दिन खड़े होने, अगर यकीन होता तो थर थर कांपता, अगर यकीन होता तो ये कभी भी ये काम ना कर सकता, अगर यकीन होता तो इंसान कहता मेरी तरफ से ज्यादा चला जाए काम ना पड़ जाए, लेकिन जब हमें अपनी इज्जत का ख्याल होता है ना तो हम कोई मेहमानों को बुलाया होता है तो हम कहते हैं ज्यादा हो जाए कम ना पड़े, कहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर कम हो गया, मेहमान आएंगे तो हमें ये देखो दुनिया में बेइज्जती का कितना ख्याल होता है, जो हम कहते हैं कि ज्यादा बना लूं कोई बात नहीं बच ही जाएगा ना, लेकिन कम ना पड़े, लेकिन आखरत के मामले में हम कहते हैं क्योंकि उसके यकीन नहीं है ना, कम पड़ जाए ज्यादा ना हो जाए, तब के लिए हमने ये रखा हुआ कम हो जाए तो हो जाए, ज्यादा नहीं मैंने देना कहीं, इसलिए कि हमें ये यकीन नहीं कि उस दिन हमने खड़े होना है अल्लाह ताला के आगे, इसलिए कि हमें उस दिन की दिल के अंदर वो फिक्र नहीं है, अगर यकीन होगा तो फिक्र होगी ना, यकीन होगा तो इंसान की जिंदगी बदल जाएगी, जिस चीज का यकीन होता है ना, आपको यकीन हो जाए आज के जो है ये फोरकास्ट में इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला माफ करे आज एक बड़ा तूफान आने वाला है, आज यहाँ स्नो होने वाली है, बर्फ पड़ने वाली है, और इतने इंच बर्फ पड़ जाएगी तो देखें सारे लोग ग्रोसरी के लिए भागेंगे, लोग अपने काम भी छोड़ देंगे ऑफिस के, नहीं भाई इंतजाम करना है मुझे, आपको यकीन हो जाए ना कि मार्केट आज गिरने वाली है तो सब अपने स्टॉक्स निकाल लेंगे आज, तो यकीन इंसान से एक्शन कराता है, यकीन के बाद ऐसे नहीं होता कि हम हंस के बैठे रहे हमें बहुत यकीन है कयामत आनी है, अच्छा आनी है उसके बाद फिर मेरे काम में कोई फर्क ही ना हो, प्रॉब्लम यकीन में है कि ये जिसको हम यकीन कहते हैं वो वाकई यकीन है भी कि नहीं, हम सब कहते हैं मुझे यकीन है एक दिन कयामत आनी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि हम अपने आप को बहला रहे हैं, तो हला या तो नू लाए करना हम अब सुन, ये कैसे हो सकता है इनको यकीन हो और इनकी जिंदगी ना बदले, ये धोखा देते रहे, इसका मतलब क्या इसको ये याद नहीं होता कि मेरा रब मुझे देख रहा है इस वक्त, जबकि मैं ये नापतोल में कमी बेशी कर रहा हूं, या जब मैं हकूक के अंदर ऐसा कर रहा हूं, जब मेरे पैमाने अलग अलग हैं, जब मैं अपनी घर वालों के साथ, देखें इंसान अपने घर वालों के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि अपने बेटे के मामले में अलग है और बेटी के मामले में अलग पैमाने रखे हुए, बहू के मामले में अलग है और लाडली बेटी का मामला अलग है, इस तरह बहुत जगहों पे है, तो जब देने और लेने के पैमाने ऐसे हो जाएं, इसी तरह बहुत सारी जगहों पे तो आज ये भी है कि वालदेन के साथ भी हम यही कर रहे हैं कि जब लेने लगते हैं तो वालदेन से चाहते हैं आओ इनको हमें ये भी देना चाहिए, ये भी देना चाहिए, हमारा हक क्या ये,
लेकिन जब वालदेन की बारी आए तो कहते हैं, तो उन्होंने कौन सा, आपने कौन बड़ा काम तो नहीं कर दिया हमें पाल पोस के, सारे ही करते हैं। तो यानी जब उनका वक्त आया कि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होने लगे, तो फिर हमें याद आ गया कि तो सारे ही करते हैं। और लेते वक्त उनसे हम कभी नहीं सोचते, सेकंड हमें थॉट नहीं आता कि नहीं बस मुझे ऐसे नहीं करना। तब तो छीन छीन के भी लेते, हम आपकी औलाद हैं, हमें यह हक मिलना चाहिए। तो हमें हर जगह पे अपने आप को चेक करना है इन आयात की रोशनी में, क्योंकि यही चीज इस चीज को डिटरमिन करेगी कि हमारे अंदर कयामत के दिन खड़े होने का यकीन कितना है। बोल के बताना बहुत आसान है, आज हम में से किसी से पूछा जाए आपको यकीन है कयामत आनी है, सब कहेंगे हाँ जी यकीन है, लेकिन मेरा एक्शन बताएगा यकीन है भी कि नहीं है। मेरा एक्शन बोलता है, तो जुबान की बात तो मुनाफिकीन ने भी बहुत की थी, और बहुत खूबसूरत बातें करते थे, ऐसी खूबसूरत बातें कि सूरह मुनाफिकून में आपने पढ़ा कि आप सुने तो आप यानी खुश हो जाएं उनकी बातें सुन के, और मेस्मराइज्ड हो जाएं कि वाह वाह क्या बात कर रहे हैं, इनका तो ईमान ही किस पाए का। लेकिन अब जब वक्त आए एक्शन करने का तो कोई पता ही नहीं है। तो ये उन्हीं को कहा जा रहा है जो ईमान वाले होने का दावा करते हैं, कि तुम्हें क्या ये समझते नहीं है कि इनको उठाए जाने वाले हैं वो। लियोम इन आदीम, एक बड़े दिन के, बड़ा दिन कैसा है, वैसे भी वो बड़ा है कि 50,000 साल का दिन है, लेकिन मतलब आदा माँ कहते हैं हड्डी को, उसी से आदीम बना। तो हड्डी जो होती है ना वो सख्त होती है, लग जाए तो बड़ी चोट लगती है, तो वो दिन बहुत सख्त है, बहुत बड़ा दिन है, बड़ा बोझल दिन है, भारी दिन है। उसके आने का इनको यकीन नहीं है। यौम यकूम उन्नासु लिरब्बिल आलमीन, वो दिन कैसा होगा जिस दिन लोग खड़े होंगे लिरब्बिल आलमीन। लिए के दो तर्जुमे हैं, लिए से मुराद दो हैं चीजें, रब्बिल आलमीन के लिए, एक नंबर वन या तो रब्बुल आलमीन के इंतजार में खड़े होंगे, वो इंतजार छोटा नहीं है, वो बहुत लंबा इंतजार है, क्योंकि इब्ने कसीर ने में ये भी है कि 70 साल का इंतजार होगा, दूसरी जगह ये भी है कि 360 साल का इंतजार होगा, एक जगह 300 साल खड़े रहेंगे, एक जगह 40,000 साल तक, एक जगह 10,000 साल खड़े रहेंगे। अब देखिए ना, ये भी डिपेंड करता है कि इंसान का अमल कैसा है। अब आप कहते हैं ना, जैसे किसी की हालत जैसी होती है वैसी ही उसको लगती है, किसी को दिन और रात गुजरने का पता भी नहीं लगता, वो कहता है अच्छा पूरा दिन गुजर गया, रात भी गुजर गई, वो सुबह उठता है कहता है लो मैंने 10 घंटे सो रहा है, पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चला, ऐसे लगा अभी आंख बंद की और अभी खुल गई। और जो रात तकलीफ की होती है बताएं, पता चलता है कि नहीं चलता उसका, पता चलता है ना, कहते हैं हाय एक एक मिनट गुजारना मुश्किल हो गया, एक एक मिनट उसके लिए ऐसा होता है घड़ी देख देख के थक गई, वक्त ही नहीं गुजर रहा था, तो फर्क क्या है। कहते हैं ये रात तो मेरी सदियों के ऊपर मुहित थी, तो क्या फर्क है, क्या वो सदियों पे मुहित थी या वो एक पलक झपकने पे, दूसरा कह रहा है जी पलक झपकने में गुजर गई, फर्क है दोनों की हालतों का। वल्लाहु आलम, कई लोगों के लिए 70 साल का भी लगेगा, कई लोगों के लिए 700 साल का, कई लोगों के लिए 300 साल का, कई लोगों के 10,000 साल का, कई के लिए 50,000 साल का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन बंदों से सूरज इस कदर करीब हो जाएगा कि 1 या 2 मील के फासले पे, 1 या 2 नेजे के बराबर ऊंचा होना, ये भी आया 1 या 2 मील के बराबर। अच्छा रावी कहता है कि मुझे नहीं पता ये कौन सा वाला मील है, क्योंकि अरबों के अंदर 1 मील तो वो है जो हम मील कहते हैं अपनी जुबान में भी, मुसाफत का, डिस्टेंस का मील होता है, लेकिन एक मील उसको भी कहते हैं जो सुरमे के अंदर जो सिलाई होती है ना, जिसे आप आंख में सुरमा डालते हैं, वो कितनी होती है? आपने कभी देखी भी है? कभी सुरमा डाला हो या देखी हो? चलो नहीं डाला, देखी होगी कभी, कितनी छोटी सी उंगली के बराबर होती, या वो वाला मील मुराद है। इतने पे होंगे, इतने पे सूरज होगा और सख्त तेज होगा। हर शख्स अपने अपने आमाल के मुताबिक अपने पसीने में गर्क होगा। बाज की एड़ियों तक पसीना होगा, बाज के घुटनों तक, बाज की कमर तक। बाज को तो उनका पसीना लगाम बना होगा, यानी मुंह के अंदर पसीना और आ रहा होगा। और धूप इतनी तेज होगी कि खोपड़ी भुन रही होगी, सर भुन रहा होगा, और इस तरह इसमें जोश उठने लगेगा सर के अंदर, जैसे हंडिया में उबाल आता है। दिमाग जो है ना बॉयल होना शुरू हो जाएगा। हम तो ये ज्यादा, अगर दुनिया में हीट हो जाए तो हीट स्ट्रोक हो जाता है, इंसान बेहोश हो जाता है। आपको पता है ना, ज्यादा गर्मी हो तो इंसान फेंट हो जाता है, पैसा हो जाता है, लेकिन वो पैसा उठते ही होंगे, बेहोश कोई नहीं हो रहा होगा वहां पे, बल्कि दिमाग खोलना शुरू कर देता। अस्तग़फिरुल्लाह। और इसी हालत में लोग खड़े रहेंगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 साल तक बगैर बोले चाले खड़े रहेंगे, और दूसरी में 300 साल तक, जैसे मैंने कहा बाद में 40,000 साल तक, इस तरह के दम सादे के सांस की सिर्फ आवाज होगी। हम सांस की सिर्फ आवाज होगी कि सांस ले रहे हैं बस, उसके अलावा बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी ने खामोश नहीं किया हुआ, कोई माइक पे बार बार अनाउंस नहीं कर रहा। यहाँ पे तो खुतबा भी चल रहा होता है तो लोग बातें करने से नहीं बाज आते, लोग नमाज में खड़े हो तो पीछे बैठ के बातें कर रहे होते। वहां पे कोई चुप कराने वाला नहीं है, वहां पे कोई बैनर लेके खड़ा नहीं हुआ कि खामोश हो जाए, हर कोई वैसे ही खामोश होगा। क्यों? हर एक को आज अपनी अपनी पड़ गई, बोलने का भी की भी हिम्मत नहीं है। वो हौलनाक मंजर है, जाहिर है, जिसके अंदर बच्चा बूढ़ा हो जाए, हमल वालियों के हमल गिर जाए, वो मंजर किस कदर खौफनाक होगा, उसके ऊपर कौन बोल सकेगा? तो लोग इस तरह से खड़े होंगे, 300 साल तक खड़े रहेंगे, ना तो कोई खबर आसमान से आएगी, ना कोई हुक्म दिया जाएगा, यानी कोई ऐलान भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, बस खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर जाते थे तो दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़ीक़िल मक़ाम यौमल क़ियामा। खड़े होने पे यौमल क़ियामत के दिन खड़े होने की तंगी से ए अल्लाह अपनी पनाह में ले ले, क्योंकि उस दिन खड़े होने के लिए सिर्फ इंसान को दो पैर रखने की जगह मिलेगी, इसके अलावा कोई जगह नहीं होगी। अल्लाह ताला डरा रहा है कि तुम लोगों के हक मारने से बाज नहीं आते, तुम्हें कयामत के दिन का डर नहीं है, जिस दिन तुम्हें अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है, जब कोई चीज भी छुपी नहीं रहेगी, और ये जो तथफीफ तुमने की है वो भी उस दिन जाहिर होगी। वो कितना हौलनाक दिन है, वो कितना खतरनाक दिन है, वो कितनी घबराहट वाला और परेशानी वाला दिन। और लोग नंगे पैर होंगे, नंगे बदन होंगे, बेखतना होंगे, और वो जगह इंतहाई तारीक होगी। एक एक वक्त आएगा जब सूरज इतना करीब होगा, एक वक्त आएगा जब बहुत अंधेरा होगा। तो उस मैदान में ना मसाई भी मसाई है, दिल परेशान होंगे, हवास बिगड़े हुए होंगे, होश उड़े हुए होंगे, लोगों को होश नहीं रहेगा, इसीलिए तो कुछ बोल ही नहीं सकेंगे। चलो कोई दुख सुख ही कर लेते हैं, यहाँ पे तो कोई दुख की बात हो, कोई परेशानी की बात हो, इंसान कहता है मैं अपना जो कैथारसिस कर लूँ, इस तरह किसी को बता ही लूँ, हाय कितनी परेशानी, कोई यही कह दे कि हाय कितनी गर्मी लग रही। अब या देखिए आप कोई, आप किसी को जानते भी ना हो ना, किसी बस में है, किसी ट्रेन में है, गर्मी बहुत हो तो आप किसी को भी नहीं जानते होते, फिर भी आप कहना शुरू करते हैं गर्मी कितनी। ये कुछ ना कुछ इंसान कमेंट्स दे देता है, कोई कमेंट भी नहीं देगा। इब्ने मसूद फरमाते 40 साल तक लोग ऊंचा सर किए खड़े रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं, नेक और बद को पसीने की लगामें चढ़ी होंगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रात को आंख भी खुलती थी ना, तो उस वक्त भी कयामत के दिन की तंगी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। तो अब इसका मतलब है कि इंसान इस चीज को समझे कि एक दिन मुझे खड़े होना है, और ये जो नाप तोल में कमियां की गई हैं, आज थोड़ा सा फायदा उठाने के लिए मैं कहीं ये ऐसा ना हो कि वहां पे मेरे लिए मुश्किल हो। जब हम दोहरे मयार रखें, हकूक देने के अलग और लेने के अलग, डबल स्टैंडर्ड्स हों मेरे, डबल स्टैंडर्ड, मेरा दिल नहीं चाहता कि कोई मेरे बारे में बातें करे, लेकिन लोगों के बारे में कितनी बातें करते हैं। मेरा नहीं दिल चाहता कि मैं लोगों की, जब लोगों मेरे साथ कोई झूठ या धोखा करें, लेकिन जब मैं लोगों के साथ मामला करूं तो फिर झूठ और धोखे के साथ करूं। तो डबल स्टैंडर्ड रखने वाले, आपको पता है ना, अल्लाह ताला के हाँ सबसे ज्यादा बदतरीन लोग, यानी अल्लाह ताला को सबसे बुरे लगेंगे वो लोग, वर्स्ट किस्म के लोग होंगे जो डबल फेस्ड होते, एक के पास जाते हैं किसी फेस से, एक के पास जाते हैं किसी फेस, इसके पास गए तो अच्छा तू इतना अच्छा, तुम मेरे इतने बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे ऐसे, तुम तो अच्छे ही बहुत लग रहे, और फिर दूसरे के पास जाते हैं तो कहते हैं देखा था वो क्या बनी हुई थी, और वो तो ऐसी है ऐसी है, और अभी तो आप कह रहे थे उसको जाके तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अल्लाह अकबर। तो इंसान सोचे कि हमें अल्लाह ताला के आगे उठाया जाना है, और वो बड़ा दिन होगा जिस दिन खड़े होना है। हजरत उमर ने ये आयत पढ़ी थी तो इस कदर परेशान हो गए थे, बार बार पढ़ते जा रहे थे, यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, इससे आगे नहीं जा सके फिर, यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। वाकई इंसान अपने ऊपर तारी करे तो कितना परेशान होगा कि हाय इस तरह से इंतजार में खड़े रहना है, खड़े रहना है, खड़े रहना है। और ली का दूसरा माना, एक तो इंतजार का हो गया, एक ली का माना है अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है, खड़े होना है। यानी अब वो वाला मैदान, मैदाने माशर में जो इंतजार था वो खत्म हुआ, अब हाजिरी का वक्त आ गया, जब पुकारा जाएगा फलां बिन फलां हाजिर हो, उस वक्त सारे मजमे से निकल के एक बंदे को जब अल्लाह ताला के आगे खड़े होना होगा, बगैर किसी वकील के, बगैर किसी ट्रांसलेटर के, बगैर किसी सहारे के, अपने इन दो कदमों पे खुद खड़े होना होगा, और उसको पता होगा कि आज मेरा नामा आमाल मेरे रब के सामने मेरी किताब खुल रही है, मेरे यही जो सारे कच्चे छट्टे थे वो मेरा रब देख रहा है। कल्ला, हरगिज नहीं, ये हरगिज नहीं कब आता है, जब या तो पिछली बात को रिजेक्ट करना हो या अगली बात को री इन्फोर्स करना हो कि ऐसी तो नहीं है जो तुम समझते हो, तुम समझते हो कि कुछ नहीं होता, तस्वीफ कर भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, तुम समझते हो या ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे, नहीं, इन्ना किताब अल फुजारी लफी सिज्जीन, ये जो बदकारों की किताब है ये सिज्जीन में होगी। बदकार कौन कहे जा रहे हैं जो ये काम करते थे। जो नाफरमानी में हद से बढ़ गए, देखिए तथवीफ छोटी ही होती है, लेकिन वो छोटे छोटे करके भी तो गुनाह कितना बड़ा बन जाता है। आपने छोटी सी डंडी मारी, फिर छोटी सी डंडी मारी, फिर छोटी सी डंडी मारी, करते 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 वो कहां तक पहुंच गई। जैसे छोटी छोटी आप लकड़ियां जमा कर लें तो चाहे छोटी हैं वो लकड़ियां, लेकिन जब वो जमा होंगी क्या एक ढेर नहीं बन जाता। इसी तरह ये है कि गुनाह भी छोटे छोटे करते के भी कितने बन जाएंगे, इंसान को याद भी नहीं होगा कि कौन कौन से मैंने गुनाह किए थे। जो किताब है ना फुज्जार की, यानी ये वो वक्त है, ये अभी कियामत का वक्त नहीं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किताब जो फुज्जार की है, जब एक फाजिर मर जाता है तो उसकी किताब का क्या होगा, उसकी बुक ऑफ डीड्स किताब, यानी किताब से मुराद यहाँ पे नामा आमाल है,
उस नामाए आमाल का क्या होगा? वो उसका नामाए आमाल सिजीन में रखा जाएगा, सिजीन कैद खाना। और इसके बारे में ये रिवायत मिलती है कि 7 जमीनों के नीचे है। वैसे भी सिजन का मतलब तो प्रिजन होता है, और वो अल्लाह ताला का प्रिजन कहाँ पे है? 7वीं जमीन के नीचे। और बाज कहते हैं जहन्नुम में गड़ा है, तो ये एक जेल खाना है, बाहर कैफ एक जेल खाना है जो बहुत तंग जगह है। और जितनी वैसे भी चीज नीचे जाने की जितनी बात आती है ना, उसमें तंगी आती जाती है, और जितनी ऊपर की तरफ की बुलंदी की बात होती है उसमें कुशादगी आती है। जैसे अल्लाह ताला की जन्नत बुलंद है ना, तो उसका अर्ज कितना है आसमानों जमीन के बराबर। लेकिन जब आप नीचे की बात करते हैं तो तंगी की बात आती है, घुटन की बात आती है, भींचने की बात आती है। तो इनका नाम आमाल ऐसी जगह पर होगा। अब हम सोचे उससे क्या फर्क पड़ता है, रखी रखे जहां पे मर्जी बुक पढ़ी हो, हमें इसे क्या फर्क पड़ा? बुक तो जैसे मर्जी पढ़ी हो ना। नहीं, इनकी रूहें भी होंगी, इनकी रूहें भी उस जगह पे होंगी जहां पे बुक होगी। देखिए, जहां पे आपका सामान होता है आप तो वहीं होते हैं ना। अब आप कहें मेरा सामान जो है ना जहाज में उसके नीचे रखा हुआ है वहां पे, तो मुझे इसे क्या फर्क पड़ता है, सामान वहां पे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर इंसान को भी बंद कर दिया जाए तो उसकी रूह भी वहां है। वमा अदरा कमा सिजीन, और तुझे क्या पता क्या चीज तुमको बताए कि वो कैद खाना कैसा है। आप सोचे दुनिया में तह खाने के नीचे एक और तह खाना हो, उसके नीचे एक और तह खाना हो, और उसके नीचे एक और तह खाना हो, और फिर 7 तह खाने हो, तो उसका क्या है? तो जमीने 7ों जमीनों के नीचे, यानी बहुत नीचे। यानी कि बात सिर्फ नहीं है, हमें अभी पता नहीं है कि क्या है 7 जमीने, लेकिन हमें पता है कि 7 जमीने हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे 7 आसमान है, इसी तरह कुरान में है कि उसी की मिसल जमीने भी हैं। तो हमें पता चला कि 7 जमीने तो हैं, लेकिन अब वो 7 जमीने किधर हैं? क्या इसी जमीन की 7 लेयर्स हैं, या कोई और जमीने हैं, या कैसे है, उसकी हकीकत हम नहीं जानते। मगर ये हमें पता चलता है कि सबसे निचली जमीन में कोई सिज्जीन है, जहां आमाल नामे भी हैं और यहां पर उनकी रूहें भी हैं। किताब मरकूम। अब ये नहीं कि इस सिज्जीन की डिस्क्रिप्शन दी जा रही, बल्कि किताबुल फुज्जार की डिस्क्रिप्शन है। किताबुल फुज्जार ऐसे लिखी गई हुई है जैसे कि सख्त है, यानी उसके अंदर उस बंदे के आमाल भी लिखे हुए हैं, और पक्के पक्के लिखे हुए हैं। कोई मिट नहीं सकता कि कोई जाके मिटाए वहां पे, कोई जाके उसके अंदर दखल अंदाजी कर दे, किसी में कमी कर दे, इरेज कर रहा है, या फिर ज्यादा लिखा है। किताब मरकूम। अल्लाह अकबर। ये मैंने आपको बताया मरकूम ऐसी लिखाई जो कि थिक भी होती है और क्लियर भी होती है, यानी मोटी मोटी लिखाई लिखी गई हो। तो यानी वो ऐसी जगह पे उनका ऐसी जगह पे लिखी गई है उनकी जो किताब है, ऐसी जगह है, ऐसी चीज में लिखी गई है जो वाकई मिटाई नहीं जा सकती, वहां तक किसी की रीच नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। वैलु यौम इदिल मुकद्दिबीन। वैल है इस दिन उन लोगों के लिए जो झुठलाने वाले हैं। वो किस चीज को झुठलाते थे, किस चीज को नहीं मानते थे? अल्लाह दीन युकद्दिबून अभी यौम दीन, ये यौम दीन को तो मानते ही नहीं थे। ऊपर क्या आया, अला यदुनु लायका अन्नहुम मबऊसून, यानी क्या इनको यकीन नहीं है कि ये उठाए जाने वाले हैं? अब कह दिया गया ना सिर्फ इनको यकीन नहीं था बल्कि ये तो झुटलाते थे। लेकिन एक कुफर होता है और एक तकजीब होती है, दोनों में थोड़ा सा फर्क समझ लें, इसी से आपको मुकज़िबीन का पता चलेगा जो तकजीब करने वाले हैं, और यहाँ पे कि उन्होंने कयामत के दिन की तकजीब की। एक तो ये है ना कि कोई कहे मैंने नहीं मानता, मैं नहीं मानता, वो तो काफिर है, ठीक है, और एक मैं नहीं मानता और तुम झूठे भी हो, और ये बातें सारी ऐसे ही बेकार फेक हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है, और ये तो कहानियां हैं, और ये तो पिछले लोगों की बस बातें हैं, और ये तो
तुम ऐसे ही एक प्रोपोगंडा सा कर रहे हो, और ये तो बस डरावे ही है तुम्हारे, और कुछ नहीं होना, और ऐसा है, एक ही है। तो ये है तकजीब। तकजीब करना कुफर से भी ऊपर चली जाती है बात। एक बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, और एक बंदा उनके ऊपर ऑब्जेक्शंस करने लगता, तो फर्क है ना दोनों में। तो ये तकजीब करते थे, ओ जी कोई नहीं आता कयामत का दिन, ऐसे ही डरावे दिए गए, और आया क्यों नहीं अब तक फिर, वरना किसी ने आके तो बताया नहीं आज तक। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। ये इनके ना करतूत बताए जा रहे हैं कि ये करते क्या थे। अब देखिए ये काल कोठड़ियां होती हैं ना, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, यानी जेलों में जहाँ पे मुजरिमों को डाल दिया जाता है, खतरनाक वाले, अंधेरी, और बस एक बंदे को वहां पे बंद कर दिया जाता है। ये सिज्जीन तो ऐसी जगह जहाँ पे रूहें रखी गई हैं, और भी बद रूहें होंगी वहां पे, बुरी रूहें होंगी वहां पे। ये वो लोग हैं जो तकजीब करते थे कयामत के दिन की। तो इस दुनिया में बोला गया कोई लफ्ज भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इंसान ये सोचे कि इससे तो क्या फर्क पड़ता है, ये मुंह की बातें, ये तकजीब करना, ये ऐसे ऐसी ऐसी बातें जुबान से निकालना, ऐसे ऐसे दावे करना कि कुछ भी नहीं, और ऐसे इंसान को कहाँ तक भुगतना पड़ेगा, कहाँ तक भुगतना पड़ेगा। देखिए मार के भी उसको जो है ना, यानी इस चीज से फरागत नहीं मिली, मार के भी वो इस चीज से अपनी जान नहीं छुड़ा सका जो उसने बातें इस दुनिया में की थी। अब इंसान बोल के उसके बाद परवाह भी नहीं करता, उसके बाद अपना रास्ता लेता है, उसके बाद उसको भूल ही जाता है मैंने कहा क्या था। लेकिन देखें अल्लाह ताला के हाँ ऐसी चीजों का रिकॉर्ड कैसे रखा हुआ कि अभी कियामत आई नहीं है, लेकिन इस जगह पे इनको लॉक कर दिया जाएगा। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो हदीस के जो फासिक है, फाजिर है, यहाँ पे काफिर की बात नहीं की गई, फाजिरों की बात की गई। वो फाजिर कोई भी हो सकता, वो जो फासिक फाजिर है उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, उसकी रूह जब ऊपर को जाती है तो वो क्लोज कर दी, नहीं ये नहीं एंटर हो सकता, उसको धकेल दिया जाता है जमीन की तरह, और फिर सिज्जीन के अंदर उसको डाला जाता है ना, और उसके नामा अमाल भी साथ ही।